उसे जानने वाले या उपलब्ध सॉरी उपलब्ध समस्त शास्त्रों के ज्ञाता उपलब्ध समस्त शास्त्रों के ज्ञाता ये उपाध्याय होते हैं। समस्त शास्त्रों में जो है जैन अजैन सब शास्त्र आएंगे ये लिखने वाले स्व समय पर समय सबके ज्ञाता होते हैं उपाध्याय बड़े वस्तु सब कोई समय सार के जैसा व्याख्यान करेंगे वैसे ही कुरान की आयत का भी व्याख्यान सब जितना विदित है सब सबके बारे में जानते हैं उपाध्याय परमेष्ठ। फिर आचार्य परमेष्ठ लिख लीजिएगा क्योंकि श्रवणाचार में ही सब आएगा है ना। आचार्य परमेष्ठ भी लिखिएगा आचार्य के 36 लेकिन ये ध्यान रखें कि उनके पास 28 ऑलरेडी हैं एक साधु के आचार्य के पास भी और उपाध्याय के भी हो सकते हैं एक आचार्य के पास लेकिन होना जरूरी नहीं है पर साधु के होना जरूरी है।
तो जो उपाध्याय के 25 हैं ये
उसके साथ 28 भी हैं
आचार्य के मतलब होंगे 28 और 36 ही वाले
हाँ
तो 25 आवश्यक नहीं है
25 आवश्यक नहीं है उपाध्याय वाले आचार्य के लिए हों तो अच्छा है। अब 36 में लिखेंगे 5 महाव्रत क्योंकि जब 5 आचार 5 आचार 10 धर्म मैं कंफ्यूज करता हूँ इसको हमेशा कंफ्यूज करता हूँ लिखिएगा कितना क्या लिखा
5 महाव्रत
5 आचार तो होते हैं 5 महाव्रत तो चूंकि इसमें आ चुके हैं फिर भी लिखिएगा 5 महाव्रत 5 ये हो गए
10 धर्म
और 12 तप कितने हो गए 32 हो गए 5 महाव्रत काट दीजिए 6 आवश्यक लिखिएगा है ना 6 आवश्यक कितने हो गए
33
हुए 3 गुप्ती 36 हो गए इस तरह रिपीट होता है सिर्फ आवश्यक बाकी सब जो है ज्यों के त्यों रहे आवश्यक में भी उनकी विशेषता हो जाएगी इसलिए उनके आवश्यक फिर से रखे सामान्य साधु के आवश्यक अलग है और एक आचार्य के आवश्यक अलग है वो उन सब उत्कृष्ट रूप से करेगा हम 48 मिनट समय करेंगे तो उसको 2.25 घंटे समय
3 बार
तो उनका आवश्यक स्तुति उनके लिए अधिक वंदना अधिक सब चीजें बढ़ जाएंगी आचार्य प्रतिष्ठ तो आचार्य हमें सामान्य बात करेगा ये हो गए
जैसे उपाध्याय पद के बाद आचार्य पद मिलता है
नहीं
नहीं कुछ कुछ जो जिनके साथ ऐसा होता है तो उनमें तो
उपाध्याय वाले भी गुण रहेंगे जिनके उपाध्याय दीक्षा पहले हुई है फिर उसके बाद उनकी आचार्य दीक्षा हुई है तो उसमें दोनों
भाई उपाध्याय की दीक्षा तो आचार्य देते हैं उपाध्याय की दीक्षा तो
आचार्य ही देंगे
तो वो
आचार्य ही आचार्य दीक्षा देंगे आचार्य दीक्षा भी दूसरा कोई आचार्य देगा अब वो दूसरा आचार्य क्यों जो आचार्य है वो अपना पद अपने शिष्य को देगा तो वो ट्रांसफर करेगा ओरिजिनल वही है परंपरा क्या
नहीं
उपाध्याय आचार्य पद नहीं दे सकते उपाध्याय को उपाध्याय पद आचार्य महाराज देंगे
एक आचार्य कई आचार्य बना
नहीं बना
नहीं एक आचार्य
एक ही को आचार्य बना सकता अपना आचार्य पद हैंड ओवर कर सकता
तो
मेरे से मत पूछिए दुनिया में क्या चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है वो मेरे
इसी संदर्भ में अगर
आप ऑब्जेक्शनेबल चीजें कैसे पूछ लेकिन उसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा बस मैं तो जो स्टैंडर्ड है वो बताऊंगा एक आचार्य एक ही आचार्य को अपना पद दे करके आचार्य पद से मुक्त हो जाता है बाकी दो दो तीन तीन को देना ये आगम सम्मत नहीं है होता है हो हमें क्या
नहीं मतलब इसके अलावा है मेरी तो मेरा हाँ। जैसे अब किसी को आचार्य पद देना समाज को देना
समाज नहीं देते किसी को आचार्य
तो वो आज्ञा तो मंगाती है वहां से ना
नहीं आचार्य ही देता समाज नहीं कोई प्रक्रिया नहीं है चतुर्विध संघ की उपस्थिति में दिया जाता है मुनि आरिका श्रावक श्राविका बस चतुर्विध संघ देता है सबकी परमिशन से होता है कितने लोग उसके उसमें है अंडर में जो उसके शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं जिस समय वो आचार्य बनता है ऐसे थोड़ी कि आपने एक दीक्षा दे दी तो हो गए आचार्य ऐसा नहीं वो परंपराचार्य नहीं कहलाते सीधी बात ओरिजिनल ये है बाकी फिर सब चलता है वो छोड़ दो ये हो गया अब अपन आ जाएं कि इसमें जो विशेष दो चीजें हैं समझने की दस धर्म तो अपन समझ ही चुके
जी हाँ
मुक्ति क्या कहलाएगी संसार से अपने को रक्षा करने की प्रक्रिया या कि सम्यक योग निग्रह मुक्ति भली प्रकार से अपने मन वचन काय पर नियंत्रण करती ये भली प्रकार से माने प्रॉपर प्रॉपर एक्शन एक्टिविटीज जो है ना वो प्रॉपर होंगी ये गुप्ति कहलाती है और दूसरा ये कि गुप्ति में दो तरह की स्थिति बनती है एक तो हम कुछ बोलेंगे नहीं ये वचन गुप्ति है और एक हम पाप वचन नहीं बोलेंगे ये भी वचन गुप्ति है एक तो हम कोई क्रिया नहीं करेंगे वो काय गुप्ति है हम पाप क्रिया नहीं करेंगे ये भी काय हम अशुभ विचार नहीं करेंगे ये भी वचन मन गुप्ति है लेकिन हम कुछ भी विचार नहीं करेंगे वो भी मन गुप्ति है तो गुप्ति मतलब अपनी मन वचन काय की क्रियाओं को प्रॉपर करना या कि पूरी तरह से रोक लेना कंट्रोल ये गुप्ति कहलाती है ये साधु का उत्तर गुण है साधु परमेश्वर का ये उत्तर गुण है मूल गुण नहीं है मतलब वो ये करना चाहे तो करे लेकिन आचार्य परमेश्वर का ये मूल गुण है उन्हें नितांत अनिवार्य है गुप्ति का पालन करना तप जो है मुनि महाराज जी के लिए उत्तर गुण है वे 12 प्रकार के तप तपे तो ठीक है अन्यथा मूल गुण की तरह नहीं होंगे वो आचार्य परमेश्वर के लिए मूल गुण है 12 तप ये 12 तपों के नाम जानना चाहेंगे आप बाह्य और अंतरंग दो प्रकार के तप होते हैं 12 में तो उसमें अनशन मतलब उपवास फास्टिंग अनशन अवमोदरी थोड़ा भोजन अवमोदरी थोड़ा भोजन वृत्ति पर संख्यान तीसरा तप रस परित्याग
लिखने के मूड में है
ठीक है डिस्कशन करेंगे ये हो गया, कितना हो गया,
रति परिसंधान,
रस परि क्या, संख्यान, इसको इंग्लिश में मेरे पास है, क्या बोलते हैं, बढ़िया उसका स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस को, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस डाइट, और अमोदरी जो है वो रिड्यूस डाइट है, जितनी डाइट है उससे कम लिया है, अमोदरी बोलेंगे उसको, ऊनोदर भी बोलते हैं, अमोदरी ऊन का आव हो जाता है, ऊन का आव हो गया, इसलिए अमोदरी या ऊनोदर, अनशन फास्टिंग, विविक्त सयासन, लॉनली हैबिटेशन, अकेले रहना, विविक्त सयासन, लॉनली हैबिटेशन, काय क्लेश, मार्टिफिकेशन ऑफ बॉडी, शरीर पर आने वाली हर विपत्ति को शांत भाव से सहना, मार्टिफिकेशन ऑफ बॉडी, ये इतने तरह से छह बाह्य तप कहलाते हैं, छह अंतरंग वाले तप भी हैं, जिसमें प्रायश्चित, थोड़ा फास्ट लिखें, प्रायश्चित, विनय, बैयाव्रत, स्वाध्याय, बैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ये लोग पीछे बैठे हैं, फिर कहेंगे हमको सुनाई नहीं पड़ा था, विसर्ग, ध्यान, लेट लेट नदी, नहीं वैसे डिसिप्लिन रखा है इन्होंने, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो है लेकिन संकोच में कई बार अच्छी चीज छूट जाती है,
माता जी उन लोगों को आगे बुला लीजिए जो पीछे बैठे, आगे आ जाए, और आगे आ जाए, और हम लोग पीछे आ जाए,
नहीं हो गया काम, ये हो गया, कितना हो गया,
छह हो गया, राजचित विनय भैयाव्रत
स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये हो गया, ये छह जो है वो अंतरंग तप है, ठीक, तप के बारे में हो गया, गुप्ति के बारे में हो गया, एक्स्ट्रा पंचाचार है ना, ये भी नई टर्म है, पांच प्रकार का आचरण स्पेशल होता है आचार्य के लिए,
आचार्य की भैया
आचार्य के लिए तप है, भैया वृत्ति का नाम तप है, ये भैया वृत्ति साधु की भैया वृत्ति करेंगे
आचार्य,
साधु भी साधु की करते हैं और आचार्य परमेष्ठी भैया वृत्ति करते हैं,
इसीलिए
करते हैं, अब हमको शुरू शुरू में केस लॉन्च कर रहे थे तो उन्हीं के पास बैठ करके केस लॉन्च किया, फर्स्ट केस लॉन्च तो योग स्वामी जी ने कर दिया, दूसरा केस लॉन्च का समय आया तो उन्हीं के पास बैठ के कर रहे थे, अब कर रहे थे तो अटक गया बीच में, नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, फिर अपने हाथ से उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ताकि उनको एनर्जी फील ना हो, और फिर अपने हाथ से निकाल दिया, इतना एरिया अब तुम कर, अब बन जाएगा इतना थोड़ा सा,
हाँ वो करते
तो ये क्या है,
ये
भैया ठीक है, और सेवा भी करते हैं, बीमार होने पर अपने शिष्य की सेवा नहीं करेंगे, फिर शिष्य उनकी भी करेगा जब भैया व्रत, क्योंकि तप है वो तो बहुत कठिन है, तप में तप करते समय अपने को बहुत विनम्र बनाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, जिसे आवा साधा सिखाया है उसी के लिए अपना पद दे देना और उसे आचार्य बना करके उसके चरण छोड़ना, ये साधु के बस की बात है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य महाराज को दिया और नीचे बैठ के प्रणाम किया कि वो आचार्य भगवान मेरे ऊपर अनुकंपा करें, मुझे संलेखना लेकर के जीवन का, आचार्य कल के दिन जिनको पढ़ाया आवा साधा सिखाया उनके लिए तो बहुत अतिशय विनय होती है, क्योंकि तप है, विनय तप है, विनय करेंगे ज्ञान की विनय करेंगे, वो किसी के पास भी हो सकता, अपने से छोटों के पास भी हो सकता, सब में ज्ञान की विनय करेंगे, दर्शन की विनय करेंगे, श्रद्धा की विनय करेंगे, चारित्र की विनय करेंगे, अपने जो और शिष्य उनके पास अच्छा चारित्र है तो उसकी विनय करेंगे, तब की विनय। ये पंचाचार में जो है पांच प्रकार का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, ये तो ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों लिख लीजिएगा, इन्हीं को आचरण, ज्ञानाचार वो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये इस तरह से पंचाचार हैं। वीर्याचार मतलब शक्ति, वीर मतलब होता शक्ति, आचरण करने में अपनी शक्ति को छुपाएंगे नहीं, उत्कृष्ट आचरण करेंगे, तो वीर्याचार अपनी शक्ति को नहीं छुपाएंगे, ये जो है आचार्य बंदिष्ठी के होते हैं। आज अपने को विशेष चर्चा क्या करनी थी, खड़े होकर भोजन करने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों खड़े, हमें जानकारी होना चाहिए क्यों खड़े होकर महाराज जी भोजन करते हैं। तो पहली चीज ये अलर्टनेस का प्रतीक है, पहला अप्रमत्त हो गए, लिखना नहीं, हाँ आप मैं फिर लिखवाने में लग जाता हूँ। इसकी पांच विशेषताएं हैं, पहली विशेषता ये है कि प्रमाद नहीं हो सकता, अप्रमत्त रहेंगे, अलर्टनेस बनी रहेगी, कोई असावधानी नहीं हो सकती, लापरवाही नहीं हो सकती, खड़े होकर भोजन, बैठ के अधिक मात्रा में भोजन किया जा सकता है, खड़े होकर अधिक मात्रा में भोजन नहीं किया जा सकता। अगर आप एक अंजलि पानी भी अधिक खड़े होकर ले लेंगे तो बैठने पर पेट दबने पर बाहर आ जाए, स्टमक उसको गेन नहीं करेगा, तो जितना आवश्यक है उतना ही खड़े होकर के लेंगे, तो बैलेंस डाइट होगी। तीसरी चीज इसमें ये है कि विभिन्न प्रकार के जो अंतराय हैं वो खड़े होकर के ही पालन, दोनों पैरों के बीच से कोई जानवर निकल गया, हिंसक चूहा निकल गया तो अंतराय हो जाए, अपना ही हाथ अगर जंघा से उठते समय स्पर्श हो गया तो अंतराय हो जाए, पैर हिल गए तो अंतराय हो जाए, ये तीसरी। चौथी चीज अतृप्ति बनी रहती है, तृप्ति नहीं होती, खड़े होकर के भोजन करेंगे हाथ में, आप कहीं पानी पीजिएगा खड़े होकर, तृप्ति नहीं होगी, ग्लास में आकर के पीएंगे तब तृप्ति, तो एक अतृप्ति बनी रहेगी, उसको जीतना खड़े होकर के। और श्रावक के घर गए हैं वो मैं बहुत सामान्य रूप से कहता हूँ, अपन लोग नहीं कहते कि जिस किसी के यहाँ गए हैं तो अच्छे से खाने पीने के लिए गए हैं तो बैठ के खाएंगे बढ़िया से, कहते नहीं भिक्षा लेने गए हैं आप उसके यहाँ पर, तो भिक्षु की तरह जो है मांग करके हाथ में और ले करके वापस लौट रहे, तो वो भी है। और सबसे आखिरी चीज ये है कि जो खड़े होकर भोजन करेगा उसके पैरों में कंपन होने की स्थिति में वो समझ जाएगा कि अब जीवन का अंत निकट है, इसलिए मुझे भोजन की आकांक्षा धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा बैठे बैठे भोजन करेगा तो वो भोजन करते करते ही प्राण निकल जाए तो भी पता नहीं लगेगा, खड़े होकर भोजन करने वाला आखिरी समय आने से पहले ही अलर्ट हो जाएगा कि पैर दबने लगे हैं, जरा अवस्था वृद्धावस्था आने लगी है, मुझे अब आसक्ति छोड़ देना, आसक्ति धीरे धीरे करके वो आसक्ति को कम, ये इसलिए जो है खड़े होकर के भोजन करना मेन तो अलर्ट। कितना एंगेज किया है, बोलना नहीं है, एक हाथ में पीछे कमंडल एक हाथ ऐसा भी मांगने नहीं जा रहे, एंगेज है, नपाप करेंगे दोनों हाथ हमारे एंगेज है, यहाँ भी हम दोनों नहीं तो इशारा नहीं करेंगे कि आप ये दे दीजिएगा वो दे दीजिएगा इस पर आराम से खाया जा सकता है ऐसे करके, नहीं दोनों हाथ एंगेज है, अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपका अंतराय बनेगा। अंजलि बांधना बहुत मुश्किल होता है, जब तबीयत खराब होती है तब मुझे मालूम है कि अंजलि बनती नहीं है, इसमें से नीचे गिरने लगता है, ऐसे जाती है और यहाँ से पूरा गिर जाता, मुड़ तक नहीं जाता, मुड़ता नहीं हाथ, इसलिए पानी पात्र रखा हुआ है, जब तक पानी पात्र में भोजन लेने की क्षमता है तभी तक भोजन लेना, जब तक पैरों में खड़े होने की क्षमता है तभी तक भोजन लेना, अन्यथा नहीं लेना, ये जो है इसलिए खड़े होकर के भोजन रखना एक मूल गुण रखा हुआ मुख्य गुण है। फिर एक ही बार भोजन लेना ये तो ठीक है, जितना एक बार खावे वो योगी, दो बार खावे वो भोगी, और बार बार खावे तो रोगी, ऐसा करके हाँ क्षुधा रोग है, क्षुधा भी जो है और रोग नहीं, शुद्ध भूख अपने आप में एक रोग है, तो बार बार खाता है तो मैं रोगी मानता हूँ कि इनको बहुत ज्यादा भूख का रोग है।
लेकिन महाराज जी हमारे यहाँ तो ये कहती है एलोपैथिक तो कि दो डाइट्स होनी चाहिए और तीन निबलिंग्स होनी चाहिए,
वो किसके लिए? किसके लिए?
फॉर एवरीबॉडी।
नहीं, एवरीबॉडी से मतलब उनका ये है कि जो आपके वर्क कर रहे हैं, जिनको अपनी गृहस्थी मेंटेन करनी है उनके लिए, मतलब लेकिन जिसको गृहस्थी नहीं, जिसको अपने अंदर ही ध्यान के द्वारा ऊर्जा अतिरिक्त मिल रही है, वो अतिरिक्त ऊर्जा ले लेगा डाइट के द्वारा, तो उसकी ऊर्जा को वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो इंद्रियों में उसके जो है विजय नहीं प्राप्त हो पाएगी। और एक ही बार में भी गरिष्ठ पदार्थ नहीं लेगा, हैवी कोई भी चीज नहीं लेगा जो देर तक रहने वाली है, जिससे कि इंद्रियां पुष्ट होती है, वो कोई पदार्थ नहीं लेगा, इतनी अलर्ट है। एक बार भोजन लेना है, लेकिन उसमें भी जो जितना आवश्यक, जितने में दिन भर का काम चल जाए वो उतना है। शरीर छीण भी ना हो, लेकिन शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं बना, मोटा ताजा हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगी उसमें जाकर के संलग्न ना हो। अब करो उसको, कैसे करोगे? चार लाख उठाने के लिए चाहिए आप हेल्थी आदमी, कहते नहीं अपने हाथ से उठाओ रखो, अपने हाथ से करवट ले सारा। तो ये जो है
अधिक भोजन से विचार भी
विचार और घरिष्ठ भोजन कर ले, इष्ट भोजन कर ले, जो अपन को इष्ट लगता हो तो अधिक खा जाते हैं जो अपने कुछ रुचिकर चीज। कई लोगों को मैंने देखा, उनको मिर्ची रुचिकर लगती है, तो मिर्ची अगर उनको ठीक ढंग से मिल जाए तो कहेगा तो रोटी ज्यादा खा जाए। अब देखना अलग अलग है, हाँ तो तामसिक हो जाएगा। और रुचि जो अपनी रुचि का है, इष्ट नहीं खाना, जो इष्ट है उसी को पहले छोड़ना, और जो गरिष्ठ है नहीं तो उसकी आशक्ति बनी रह जाएगी। ये उसमें एक्चुअली अनाशक्त होने के लिए सारा प्रयास है, तो ये भी अनाशक्ति में आ गया। खड़े होके भोजन, एक बार भोजन, केश लुंचन करना, ये तो बहुत कहते हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, हर दो महीने में, तीन महीने में, ज्यादा से ज्यादा चार महीने में एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, इम्तिहान अपने हाथ से खुद लेना और देखना कि क्या ये पृथक करने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती। अगर होती है तो सहन करो, क्योंकि आत्मा को नहीं होती, शरीर आश्रित है। तो अपने आत्मा और शरीर के बीच भेद रेखा 3 घंटे तक लगातार करेंगे, शांत भाव से किसी कोने बैठ करके। और अच्छा, और फिर अगर केश लॉन्च नहीं करेंगे तो किसी से कटवाएंगे, जिससे कटवाएंगे उसके सामने सिर झुकाएंगे, जबकि आपका हाथ रहना चाहिए लोगों के सिर पे, और अब उस किसी का हाथ आपके सिर पे है, नापित जो कटिंग करेगा उसका हाथ आपके सिर पे है। तो कहते हैं ये अवज्ञा हो गई, ये मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। इसलिए स्वाश्रित पराश्रित नहीं होना, इस अपेक्षा से जो है केश लुंचन की प्रक्रिया भी निरीहता, निडरता और ये क्या बोलेंगे, वैराग को बढ़ाने में, 3 चीजों, निरीहता बढ़ती है, अनाशक्ति होती है, वैराग बढ़ता है, और निडरता आती है कि मैं स्वास्थ्य हूँ किसी के आश्रय। इसलिए एक केश लुंचन, और अब तो एक थेरेपी चल गई, हेयर थेरेपी अभी डेवलप हुई, तो इसमें उनका कहना है कि अब ट्रीटमेंट जो है वो आपको टैबलेट्स नहीं दी जाएंगी, जो भी दवाई देना है आपके 2-3 बाल जड़ से उखाड़ कर ले लिए जाएंगे, वो बाल की दवाई में डाल करके आपका ट्रीटमेंट रेमेडी होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे आचार्य ज़्यादा साइंटिस्ट थे, उनको पहले से मालूम है हर 2-3 महीने में आप अपने बाल जड़ से उखाड़ के ज़मीन के अंदर 1 फिट नीचे दबा दीजिएगा, आपकी रेमेडी पंचभूत तत्व जिनसे शरीर बना है, नेचर आपको स्वयं ही सर्वाइव करेगा, आपके पास नेचर से सर्वाइव करने की कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका नेचर में बाल जो है हर 2-3 महीने में निकलते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक नहीं, वो केवली भगवान के होते हैं, सामान्य मुनि के
जो है सो किसी नदी प्रवाह में
नहीं, नदी प्रवाह में नहीं, क्योंकि अगर उसको मछली खा लेगी तो मर जाएगी बाल को, क्योंकि उसके पीछे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। वस्त्र हमारे मैंने राग के प्रतीक है ना, क्योंकि हम लेके तो आए नहीं थे, अपने साथ पहने हुए आए नहीं थे, हमने बाद में अडॉप्ट किए हैं, तो एडॉप्टेशन तो किसी भी चीज़ का स्वीकार नहीं है। इसलिए जो है निर्विकार और यथाजात रूप धारण करते हैं। जब व्यक्ति वस्त्र से मुक्त नहीं हो पाएगा तो शरीर से कैसे होगा और कर्मों से कैसे होगा?
परिग्रह का भक्त हो जाएगा,
परिग्रह का भी एक चाह लंगोटी जी तो खाने वाली बात हो जाएगी, उसको मैनेज करने के लिए एक कपड़े को मैनेज करने के लिए कितना पैसे, तो अचेल रख दिया है। और दूसरा ये कि अपने विकारों पर विजय भी प्राप्त करना है, कि मेरे पास मेरा अनुभव ये कटनी में मैं था उस समय, तो वहाँ ईश्वरी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ऐसा करके था, मैं वहीं से निकला करता था, तो उनमें भी भाई बहन रहते हैं और वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या ब्रह्मचर्य के लिए नग्न होना जरूरी है, हम लोग भी तो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। तो बोले आप हमारे महाराज जी से पूछ लीजिएगा, लोग नहीं बता पाए। वो मेरे पास आए तो पहले तो बड़े अनईजी उनको लग रहा था कि कैसा करेंगे, वस्त्र नहीं पहनते, इनसे बात कैसे करेंगे, ऐसे करके आनी थी। फिर वो आए बैठे, उन्होंने मेरे से यही प्रश्न किया कि आप क्षमा करेंगे, क्या ब्रह्मचर्य के लिए अनिवार्य है क्या ये रहना? मैंने अब इनको कैसे जवाब दूँ? मैंने सिर्फ यही कहा कि क्या आपके विकार वस्त्रों में छुप नहीं जाते? इससे झुका लिया उन्होंने, विकार की बात ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर क्षण भर भी अपने मन में कोई चीज लाएंगे, विकारी भाव आएगा, तो फेस पर प्रकट होने में कोई ज्यादा देर नहीं। इसलिए निर्विकार रहने के लिए, और ये तो मैंने खांडे की धार फैलाती, सबसे ज्यादा सबसे कठिन अगर है तो सबसे
कठिन
इंद्रिय में निरोध तभी हो सकता है। ये हो गया अचेल, इसलिए अचेल और दिग अंबर, दिशाएं ही जिसके अंबर हो गए, दिशाएं ही जिसके वस्त्र, इसलिए जो है उसको दिगंबर हो। आयस्नान, जब वस्त्र नहीं है तो फिर स्नान तो निरंतर हो रहा है, जल के स्नान में तो हिंसा होती है, वायु से स्नान हमेशा हो रहा, सूर्य से स्नान, सूर्य की रश्मियों से हमेशा स्नान हो रहा। और फिर कहते हैं ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचारी से रहता है वो पवित्र ही है, वो अपवित्र होता ही नहीं। इसलिए जो है आयस्नान। और एक अभी मैंने कहीं फिर पढ़ने नहीं मिला वो मुझे, उसमें आया था कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जीता है, कोई वस्त्र धारण नहीं करता, अगर वो स्नान करता है जल से तो उसे कई रोग हो सकते हैं। तो हमारे आचार्य ने पहले से ही ये चीज रख दी है कि जो नेचुरल वो है स्नान हवा के द्वारा और सूर्य के द्वारा। आचार्य श्री से तो एक कमांडर आए थे वो मिलिट्री के, तो उन्होंने कहा कि और तो सब आपका ठीक लगता है लेकिन आप लोग स्नान नहीं करते तो कितना गंदा नहीं हो जाता शरीर? तो उन्होंने कहा किसने कहा आपसे कि हम स्नान नहीं करते, हम तो रोज स्नान करते हैं, दिन भर करते हैं। बड़े चौंके वो, बोले कैसा? तो बोले हमें हवाएं हमेशा स्नान कराती रहती, पवन टकराती रहती, वो स्नान कराती है सूर्य का प्रकाश। बोले आप तो सनलाइट से नहाते हैं, हम तो मूनलाइट से भी नहाते हैं। हम चंद्रमा के प्रकाश में भी स्नान करते हैं। उनका बड़ा जवाब देने का ढंग। तो यह स्नान अदंत धावन, दांतों को चमकाएंगे नहीं, दांतों को धोएंगे, उनमें से जो गंदगी है वो निकालेंगे भोजन के समय ही, पर फिर उसको चमकाने की कोई प्रक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि अनईजी फील होता है स्नान नहीं, स्नान करके फ्रेश होकर के फिर खाना खाओ और बिना स्नान के खाओ, दोनों में कितना फर्क है। और बिना मुंह धोए और खाना खाओ तो कैसा लगेगा? बहुत अनईजी लगेगा, पर उसी को तो जीतना है। इसलिए अदंत धावन, अपने किसी भी चीज मैंने शरीर के आश्रित जो है उनको रागान्वित नहीं करेंगे, दूसरे को अच्छा लगे ऐसा नहीं रखेंगे अपने शरीर को, दूसरे को उसके प्रति राग ना हो ऐसा शरीर। फिर भूषण, भूमि पर शयन करना, किसी उसकी आवश्यकता ना पड़े, मैंने कितना अनकंडीशनड हो। आज आदमी कितना कंडीशनड है, उसको ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए दुनिया भर की, लेकिन इनको कहते कि नहीं, आप जितना हो सके उतना अनकंडीशनड रहे, कोई कंडीशन नहीं, जैसी परिस्थिति बने वैसे ही सो जाना, पाटा मिल गया तो पाटे पे सो जाना, घास मिल गई तो घास पे सो जाना, कुछ भी नहीं मिला तो जमीन के ऊपर घुस आए लेट जाना। ये ऐसे कुछ
जी दो बात तो मुझे इसी में
मुझे
वो कर लीजिए।
ये हो गया, अब अपने को श्रमणाचार में और कुछ आप पूछना चाहेंगे क्या? मेरे ख्याल से श्रमणाचार में इतना ही पड़ेगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हो अब तो ये करिएगा कि इसमें बीच बीच में जो अपन सुनते हैं ना बाहर, या इसमें ये कैसा, तो अपन इसी में से फिर और निकालते जाएंगे, पर एक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह का आचरण होता है। फिर इसमें बहुत, अब एक साधु दूसरे साधु से कैसे व्यवहार करेगा, ये सब आरिकाओं का साधु से क्या व्यवहार रहेगा, श्रापक और साधु के बीच क्या संबंध रहेगा, ये सब तो फिर अपन डिटेल डिस्कशन
जो करते हैं 48 मिनट की, उसमें क्या क्या चीज पड़ जाती है? श्रावक करना चाहे थोड़ा सा करने के लिए,
श्रावक तो पंच नमस्कार मंत्र करेगा और उतनी देर के लिए संकल्प को लेगा कि मैं 5 पाप नहीं करूंगा, मन से, वाणी से, शरीर से, मन वचन काय से, तीनों से मैं 48 मिनट के लिए 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करता हूँ। बैठ गया। अब इसके बाद मन में गलत विचार आएगा तो उसे संभालेगा, पाप का विचार आएगा, अशुभ विचार आएगा तो संभालेगा, पर संकल्प तो लेगा कि मैं पांचों प्रकार के पाप को छोड़ता हूँ और भगवान का स्मरण करूंगा, यही उसकी सामाई है। और जो और ऊंची स्थिति में पहुंचेगा तो फिर वो अपने आत्मा का
चिंतन तीन बार करना आवश्यक है कि एक बार कर सकते
हैं, जिसने तीसरी प्रतिमा ले ली
तो
कोई
एक बार कर सकते हैं,
एक बार कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, फिर 48 मिनट का भी नहीं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर मन लगता है उतनी देर का श्रावण कर सकता है सुबह शाम आराम से। तो श्रमणाचार में तो मेरे ख्याल से कितनी ही चीजें आवश्यक थी, मुक्ति के बारे में लिखवा दिया, मन मुक्ति वचन मुक्ति का होती है, 12 प्रकार के तप हो गए, और कोई टर्म उसमें रहते नहीं है। अब श्राम का चार शुरू करें
जी।
वैसे अपन कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ चुके हैं श्राम का चार, पर फिर भी श्रावक में तीन शब्द हैं, श्रा व का। श्रा से जो श्रद्धावान, श्रा इज इक्वल टू श्रद्धावान, वा विवेकवान, का क्रियावान, श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान वो कहलाएगा श्रावक। सामान्य गृहस्थ अलग चीज है, और गृहस्थ में फिर ये इस तरह हो जाए, श्रद्धालु है, विवेक रखता है क्या करना है क्या नहीं करना, हे उपाधेय जानता है, और फिर किया भी करता है अकेला, ऐसा नहीं कि जो चीज सुन ली तो उसको भले ही 0.00001% है चलिएगा, लेकिन करेगा जरूर, एक क्षण के लिए करे, पर करे तो करने की इच्छा रखे। जम सक कई तम की रही, कहते हैं कि जितना कर सकता उतना करेगा, जितना नहीं कर सकता उसके प्रति श्रद्धा रखेगा कि मुझे करेगा। ये श्रावक का वो हो गया मैंने परिभाषा। श्रावक तीन तरह के, एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक श्रावक होता है, एक साधक श्रावक, ऐसे तीन तरह के श्रावक। पाक्षिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक होता है नैष्ठिक, अच्छा लिख रहे हैं नैष्ठिक, निष्ठा से बना दिया है नैष्ठिक, और तीसरा साधक, साधक श्रावक। इस तरह से तीन प्रकार के। पाक्षिक श्रावक में क्या होता है, जो अपने धर्म का पक्ष लेता है बस, अर्थात जो कम से कम जैन होने के लिए आवश्यक बातें हैं उनका पालन करता है, सप्त व्यसन का त्याग, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, ये उसके लिए अनिवार्य है। पाक्षिक श्रावक जो है अपने धर्म का पक्ष ले रहा है, अहिंसा उसका धर्म है, अहिंसा के विरुद्ध में जो चीजें जाती हैं उन्हें नहीं करेगा, व्यसन करने से हिंसा होती है, सप्त व्यसन नहीं करेगा। फिर देव दर्शन, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करेगा, और रात्रि भोजन का त्याग करेगा। ये तीन चीजें होती तो श्रावक, पाक्षिक श्रावक। सप्त व्यसन के साथ नाम लिख लीजिए, मांस आहार, शराब, इसको अपन मत और मांस बोलते हैं, फिर दूसरा, तीसरा जुआ खेलना, चौथा शिकार खेलना, पांचवा चोरी करना, ये व्यसन है। हाँ, जिसको चुराने की आदत पड़ जाती है तो वो फिर कुछ भी चीज कहीं से कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ फेरा फेरी कर दिया तो कहते ये व्यसन है, इससे बचना चाहिए, चोरी का व्यसन है, एक बार लग जाता है। पांच हो गए, वेश्या गमन, परिस्त्री सेवन, ये पहले जैनों को लिखवाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ते थे, अब इस मन से बताना पड़ते हैं कि देश के लिए हो गया, कहने में अच्छा नहीं लगता है ये व्यसन। इन व्यसनों से श्रावक दूर रहेगा जो पाक्षिक श्रावक होगा, और फिर वो तो है ही देव दर्शन करेगा, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा क्योंकि श्रद्धालु है, और रात्रि भोजन क्योंकि उसने विवेक किया है रात्रि में। और ये बात अलग है कि वो रात्रि में एक प्रकार के भोजन, दो प्रकार के भोजन का त्याग करेगा, या एक प्रकार का भोजन रख लेगा कि भाई लिक्विड रखेंगे बाकी सब का त्याग, ये भी उसकी अपनी योग्यता के अनुसार, पर वो छोड़े रात्रि में। ये तीन मध्य मधुम अंश का त्याग में ये जो है ना व्यसन में, उसमें अभक्ष का सब त्याग आ गया, सब प्रकार के अभक्ष उसी में आ जाते, ये हो गया। लेकिन इसमें एक चीज है, बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं लेना सातों व्यसन का, स्थूल रूप से सब आ जाएंगे उसमें, जिसमें मांस का दोष होगा वो सब मांसाहार। अब तीन दिन के बाद जब चौथा दिन हो जाता है आटे का बरसात के दिन में, तो उसमें जीव राशि पैदा होने लगती, मांसाहार हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए जो है इतना कड़ा होता है उसका काम, इसलिए उतना सूक्ष्म नहीं कह रहा हूँ, स्थूल रूप से वो मांस नहीं खाएगा जो होता है, जिसको मांस कहा जाता है कहना। अब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो बहुत सारी चीजों में होगा, क्या करेंगे आप, कहाँ बचेंगे, तो वो नहीं, वो व्यसन की तरह लग जाए। अब कोई अपन ने वो पिया आशव वगैरह, आशव आते हैं आयुर्वेद के, अब आशव में हल्की सी अल्कोहल होती है, तो वो नशे की थोड़ी पी रहा है, लेकिन जो नशे की तरह शराब पी जाती है उसका त्याग करेगा। इसलिए मैंने कहा कि स्थूल रूप से दूसरे के यहाँ पर बंदूक लेके चोरी करने नहीं जाए, लेकिन एक रुपए का सामान लाया है तो 1.40 का ना बेचेगा वो, नहीं तो काहे के लिए बैठा दुकानदारी करने, इसका तो करेगा तो ये वैसा नहीं चलाएगा ये पाक्षिक श्रावक। फिर नैष्ठिक श्रावक, जिसकी निष्ठा और बढ़ गई है धर्म के प्रति, अब वो 11 प्रतिमाओं का पालन करेगा, ये आदि प्रतिमा। नैष्ठिक श्रावक जो है, निष्ठावान श्रावक, 11 प्रतिमाएं एक एक करके प्रतिमा का पालन करेगा। प्रतिमाओं के नाम लिख लें, फिर इनको अपन एक एक करके, मैं बहुत शार्ट में पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इनके लक्षण बाद में लिख लेंगे अपन, ताकि एक दिमाग में फ्रेम बन जाए। ऐसे ही गुणस्थान का एक फ्रेम बना दीजिएगा, जब भी कोई गुणस्थान की चर्चा हो तो आपके दिमाग में वो आ जाए कि ये इसका मतलब। ऐसे मैं प्रतिमाओं को बना देता हूँ कि कैसे प्रतिमाएं आगे बढ़ती, कैसे व्यक्ति श्रावक भी ऊंचाई पर पहुंचता है। 11 प्रतिमा, ये हो गया पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा। प्रतिमा शब्द तो कॉमन है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, दर्शन, व्रत, सामायिक, सामायिक, प्रोषद, प्रोषदोपवास, प्रोषधोपवास है, लिख लिया, प्रोषधोपवास। फिर सचित्त त्याग, पांचवी सचित्त त्याग, कोई भी कोई बता रहा। नंबर 6 रात्रि भोजन त्याग, देखना ठहरो अभी ठहरो, रात्रि भोजन त्याग। फिर नंबर 7 ब्रह्मचरी प्रतिमा, नंबर 8 आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, आरंभ को बोलते क्या सिंफुल, आरंभ मतलब स्टार्टिंग नहीं, सिंफुल एक्टिविटीज, ये टेक्निकल वर्ड है जैनिज्म का, आरंभ सिंफुल एक्टिविटी, आरंभ त्याग प्रतिमा। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा नंबर 9 है ना, नंबर 10 अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग। फिर 11वें नंबर उत्तिष्ठ त्याग, ये होंगे 11 प्रतिमा। क्या होता है जब उत्तिष्ठ,
उत्तिष्ठ
उ आदा दा दामे छुट्टी की मात्रा आधा सारो टाक, उत्कृष्ट पहली क्लास में अभी पढ़ाया सबसे कठिन है ना, क्योंकि कभी परिचय नहीं है कब का उत्कृष्ट। तो ये हो गई 11 प्रतिमाएं। क्या होता है एक श्रावक के अंदर, सबसे पहले तो उसने अपना पक्ष लेना शुरू किया, जिस धर्म में वो है उसका पक्ष लिया, भाई इस धर्म को हम बिलोंग करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए, भाई दर्शन नहीं करना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, भगवान के प्रणाम तो करना चाहिए, इतना उसने तय कर लिया। अब उसकी निष्ठा बढ़ती है कि जो भगवान ने कहा है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूँ, भगवान के निकट रहूँ, मेरा अधिक समय अपने आत्मा की निकटता का रहे, बाकी पदार्थ मेरे छूटते जाए, तो क्रम बना लिया। ठीक है, छोड़िएगा पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगा। अभी तो देव दर्शन का नियम था, सो सुबह से शाम तक कभी भी कर लेता था, खा पी के चला जाता था, दर्शन प्रतिमा ले ली है, अब तो जो है मैं बिना दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये दर्शन प्रतिमा। और सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं होगा, वीतरागता के अलावा किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। जो भी भोजन करूंगा मर्यादा पूर्वक करूंगा। जिस जल की जीवानी डाली जा सकती है वही जल पीऊंगा। कुएं का हो गया। ये इतनी चीजें वो अपने को टाइट कर रहा है ताकि उसका अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में लग सके। सावधानी उसकी रहे। सावधानी ही ध्यान धर्म है। जितनी सावधानी रहेंगे, जितनी कम हिंसा करेंगे, उतने हम धर्मात्मा होंगे। अकेली धर्म की किताब पढ़ने से, पूजा करने से नहीं, नहीं, हम जितनी अपने जीवन को जीने में सावधानी रखेंगे, उतने हम धर्म की तरफ, अहिंसा की तरफ चलेंगे। किसी दर्शन
पानी ही
जीवानी जिसकी ठीक से डाली जा सके और मर्यादा का भोजन खाएगा जो मर्यादित होगा। सब नहीं खाएगा तो कितना लिमिटेशन हो गया। मुझे तो मर्यादा का खाना है। किसी के यहाँ भी जाएंगे मर्यादा पूर्वक भोजन, मतलब आटे की मर्यादा बरसात में 3 दिन की है तो 4th दिन की आटे की बनी चीज नहीं खाऊंगा, तो लिमिटेशन हो। ठंड के दिन में 7 दिन की मर्यादा है तो ठीक है, 7 दिन के बाद वाली कोई भी चीज नहीं खाऊंगा। नमक पिसा होगा 48 मिनट का तो खाऊंगा, बना होगा मसाले का नमक नहीं खाऊंगा। अचार रखा हुआ है तो 48 मिनट का अचार खा लूंगा, बाकी नहीं खाऊंगा। इतना लिमिटेशन। पापड़ नहीं खा सकता, रोज बेलेगा तो खा सकता है, नहीं तो नहीं खा सकता। तो कितना लिमिटेशन खाने पीने की चीजों का भी। और अब समय बचने लगा उसे अपने आत्म ध्यान के लिए। पहली प्रतिमा नियम से जाना ही है, खाना बाद में, पहले भगवान का ध्यान। और भगवान का ध्यान यानी अपना सीधी देव दर्शन यानी जिन दर्शन, ये नियम है। फिर दूसरी प्रतिमा में सोचता है कि ठीक है ये तो हो ही गया, लेकिन अभी मेरी भाग दौड़ बहुत है। तो फिर 12 व्रत ले लेगा, वो व्रत प्रतिमा कहता है, जिसमें 5 अणुव्रत ग्रहण करेगा, 3 गुण व्रत ग्रहण करेगा, 4 शिक्षा व्रत ग्रहण करेगा, ऐसे 12 व्रत का पालन करेगा। तो सब तरफ से लिमिटेशन हो गई, दिशाओं की सीमा उसने कर ली, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, अनर्थ जो व्यर्थ है काम वो नहीं करेंगे। अनर्थ दंड व्रत उसमें शामिल है, गुण व्रत में दिग्व्रत और देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 व्रत जो है वो ले लेता है। मैंने पर्पजलेस सिंपलनेस, अभी तक जो है कई काम ऐसे भी कर लेते थे जिनमें की कोई आवश्यक नहीं था, अब तो सिर्फ आवश्यक काम ही करूंगा, उस क्योंकि पाप तो होगा कोई भी काम करूंगा, पर मैं अनावश्यक पाप नहीं करूंगा। ये अनर्थ दंड हो गया। बहुत दूर दूर तक क्या करना है, 10 दिशाओं की सीमा कर ली, इंडिया से बाहर जाने का काम नहीं है, नहीं जाऊंगा, चलो उतना पाप तो बचा, उसके बाहर का पाप बच गया, वहां नहीं जाऊंगा, ऐसे करके ले गई। इसी तरह अब मुझे तो मुनियों के समान आचरण की शिक्षा चाहिए है, तो 4 शिक्षा व्रत ले लेंगे, सामयिक करेगा, 2 समय नियम से सामयिक करेगा दूसरी प्रतिमा। ये फिर सामयिक और सामयिक देखिए, देशावकाशिकम वा सामयिकम क्रोशधूप वासो वा बह्या व्रतम शिक्षा व्रतानी चत्वारी शिष्ठानी, 4 शिक्षा व्रत होते हैं समन्वपत्र स्वामी के अनुसार। और इसमें अपन इनके अनुसार ले लें, क्योंकि अपन देश व्रत और दिग्व्रत उसमें रखनी है, इसलिए आचार्य उमा स्वामी के अनुसार ले लें। तो पहला आएगा सामयिक, फिर क्रोशधूप वास, फिर भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत लेगा। सामयिक में रहेगा तो 2 समय सामयिक करेगा तो और निकट स्थापने से आ गई, मुनियों के समान आचरण करने की शिक्षा मिल रही है। प्रोषदोपवास, प्रोषद उपवास करेगा। प्रोषद का मतलब होता है एक बार भोजन करना, या प्रोषद का मतलब होता है पर्व, पर्व के दिन जरूर उपवास करेगा, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करेगा। क्यों, इस करने से क्या होगा, इसके करने से उसे अब अपने आत्मा के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। कम से कम 1 महीने में 4 दिन तो वो निश्चिंत है सब गृहस्थी के उससे और अपने में लीन रहेगा, ऐसे करके अपने को बढ़ा रहा है। फिर तीसरा उपभोग परिमाण, जो खाने पीने की सामग्री और उपभोग की सामग्री उसका लिमिटेशन कर लेगा। अतिथि का संविभाग करेगा, अपने भोजन में से कोई अतिथि है तो उसे दे करके ही फिर भोजन करेगा, ये उसका नियम हो जाएगा दूसरी प्रतिमा। फिर अब इतना तो हो गया, अब और आत्मा के निकट कैसे आए, तो कहते कि अब तो जो है मैं 2 समय नहीं, अब 3 समय सामयिक करूंगा, बाकी तो सब देव का देव, बस इतना हो जाएगा कि अब तीसरी प्रतिमा में 3 समय सामयिक जरूर से करेगा। दूसरी प्रतिमा में तो ऐसा था कि थोड़ी बहुत छूट भी रख लेते थे, कभी हो पाया 2 बार तो नहीं भी हो पाया, 3-4 लग गए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी प्रतिमा लेने के बाद अब तो जो है उत्कृष्ट सामयिक करूंगा, कम से कम अपने 24 घंटे में से 2-2 घंटे 3 बार निकाल के 6 घंटे तो सामयिक करूंगा, नियम से करूंगा, कोई 3-4 नहीं लगाऊंगा, ये तीसरी प्रतिमा में आना। चौथी प्रतिमा में अब खाने पीने की, अभी प्रोषद उपवास तो करता था लेकिन प्रोषद के दिन भर उपवास कर लिया, बाकी तो अच्छे से खा पी लिया, तो कहते अब ऐसा ना चलेगा, अब तो जो है जिस दिन उपवास करना उसके 1 दिन पहले भी एक आसन करेंगे और उसके 1 दिन बाद भी एक आसन करेंगे। अब प्रोषद उपवास नाम की चौथी प्रतिमा ही हो गई। फिर अभी तो जो है बाजार में चले गए, वहीं पर केला खरीदा, वहीं छीला और वहीं खा लेते थे। अब ऐसा ना करें, अब तो जब तक उसे गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं खाएंगे। जो फल फूल प्रासुक होंगे उन्हीं को ग्रहण करूंगा। सचित त्याग नाम की प्रतिमा पांचवी। अभी तक तो रात्रि में भोजन खुद नहीं करते थे क्योंकि वो तो पाक्षिक श्रावक के उसमें आ गया था, लेकिन अब जो है न स्वयं करेंगे, न किसी को कराएंगे, न कोई करेगा तो उसका समर्थन। अब तीन प्रकार से नौ प्रकार की शुद्धि पूर्वक मन वचन काय कृत कार्य कर्मोचना, नौ प्रकार की शुद्धि पूर्वक और दिन में ही लेंगे रात्रि भोजन का त्याग। छठी प्रतिमा में लाभ जा करके होता है। फिर अभी तक तो जो है जिससे विवाह किया था उसके साथ हमारा संबंध था, अब वह भी हमारे लिए भाई और बहन की तरह रिश्ता हो गया। अब जो है ब्रह्मचर्य के साथ रहेंगे साथ में, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, ये सात्विक प्रतिमा हो गई, तो और अधिक हमारे लिए हिंसा से हम बच गए, और अधिक हमें अपने आत्मा के निकट आने का मौका मिला। अभी तो जो है ठीक है, धंधा पानी भी करना पड़ता है, गृहस्थी के काम भी करना पड़ते, भाई अब ये सब नहीं कर, अपने अपने खाने के लिए तो बना लूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब धंधा नहीं कर, बहुत कमा लिया, जिंदगी निकल गई। तो प्रतिमा आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग, षट प्रकार षट कर्म, हसी वसी कृषि वाणिज्य विद्या और सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, ये ले लिया आज, इतना श्रावक कर लेता घर में रह करके। फिर जो परिग्रह जुड़ गया था इतने दिनों में, अब उसका क्या करूंगा मैं, मेरे लिए तो जितना आवश्यक है अपने पूजा के बर्तन रखना है, अपने खाने पीने के बर्तन रखना है, पहनने ओढ़ने के बर्तन रखना है, एक ठोक कोई कमरा है उसमें रह जाऊंगा, लिमिटेशन। दूसरी प्रतिमा में परिग्रह का प्रमाण किया था, परिग्रह का त्याग कर दिया कि मैं परिग्रह छोड़ता था।